सिस्टम में सभी भक्तों से अनुरोध है कि आपके सेलफोन्स इस समय आप साइलेंट मोड पर कर दीजिए। तो चौथा अध्याय नवा श्लोक आज 31वां भाग जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। बच्चों को कोई संभाले। तो भगवान के जन्म की दिव्यता के ये पांच पहलू जिसमें हम सांत्वन पर हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। सांत्वना अर्थात एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस, अवर ड्रीम्स एंड कृष्णाज प्लान्स, हमारी ख्वाहिशें और भगवान का प्रयोजन हमारे उद्धार हेतु। तो पिछले दफा हमने ये मुद्दे लिए थे, वांट वर्सेस नीड। आई आस्क्ड कृष्णा फॉर स्ट्रेंथ एंड कृष्णा गेव मी डिफिकल्टीज टू मेक मी स्ट्रांग। आई आस्क्ड हिम फॉर विजडम, ही गेव मी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। आई आस्क्ड कृष्णा फॉर करेज, कृष्णा गेव मी डेंजर्स टू ओवरकम। आई आस्क्ड कृष्णा फॉर फेवर्स, gave me opportunities to make things turn favorable for me. I asked Krishna for love and Krishna gave me troubled people to help. I received nothing I wanted and Krishna gave me everything I needed. If Lord Krishna answers your prayers, that means he is increasing your faith. If he delays to answer, that means he is teaching you patience. If he doesn't answer your prayers, that means he knows you are capable enough to handle. It is so funny when we ask God to change our situation, not knowing that He put us in that situation to change us. Paristhiti jab na badle, to apni manasthiti badlo. एक गुरुजी और उनके शिष्य आश्रम में रह रहे थे, तो एक दानशूर व्यक्ति ने उन्हें गाय दान में दी। तो अब दूध देने वाली गाय मिली, तो गुरुजी ने शिष्य से कहा कि हमारा सौभाग्य है कि ऐसे दानशूर व्यक्ति ने दूध देने वाली गाय हमें भेंट में दी है, अब हम हमारे भगवान को दूध ऑफर कर हम भी दूध पी सकेंगे रोज। अर्थात उससे पहले उनके आश्रम में वो लोग दूध नहीं पिया करते थे। तो हां, एक महीना दो महीना रोज उन्हें ताजा दूध मिलता पीने के लिए। छह महीने पश्चात जिसने दान दिया था वो अपनी गाय फिर ले जाता है। तो शिष्य गुरु जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि गुरु जी जिस व्यक्ति ने गाय दान में दी थी वो ले गया फिर से अपनी गाय। तो गुरु जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अब गोबर उठाने का झंझट नहीं रहेगा। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, कि यदि गाय दूध देने वाली आए हमारी जिंदगी में अवश्य हम उसे उस हिसाब से देखें। तो परिस्थिति और मनस्थिति, पिछले दफा हम आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे थे, समय के अभाव के वजह से नहीं दिखा पाए, तो आज हम शुरुआत उससे करेंगे। इस वीडियो में एक डॉक्टर हेगड़े है जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बताया है कि कैसे जो हमारा अस्तित्व है, यदि हम शारीरिक अस्तित्व हमारा लें तो शारीरिक अस्तित्व को देखते हुए अधिकांश हम जब हमारे शरीर के विषय में सोचते हैं तो शरीर के विषय में हम क्या सोचते हैं, ये इंद्रियां जो साधारणतः हम हमारे शरीर के अंगों को इंद्रिय भोग में जब इस्तेमाल करते हैं तो वो शरीर के अंगों को हम महत्व देते हैं। परंतु इस वीडियो के अनुसार उनका मानना है कि हमारा शरीर सेल्स से बना हुआ है, वी आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और ये जो हमारे अंदर ये सेल्स हैं इनके अंदर परिवर्तन होता रहता है। विज्ञान के अनुसार हर 7 वर्ष पूरे सेल्स हमारे बदल जाते हैं। पूर्ण रूप से हम यदि सेलुलर कॉम्पोजिशन अपना लें तो हर 7 वर्ष हम एक बदले हुए, शारीरिक रूप से बदले हुए व्यक्ति हैं। तो ये हमारे शरीर में ये सारे जो सेल्स हैं क्या ये निर्जीव हैं, क्या ये बस एक केमिकल रिएक्शन की तरह से काम कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे मनस्थिति का? तो मुद्दा क्या है, परिस्थिति एवं मनस्थिति।
Well, what I'm going to talk to you might look a little unconventional, so I would like you to be with me. With every word, you must be with me. If you miss a word, then you'll probably miss the bus. All of you, including me, believe that modern medicine is scientific. Let me tell you this history. Modern medicine became a science in the 12th century when the European universities accepted modern medicine as science. From then on, it has been following the conventional science of physics, chemistry and biology. Unfortunately, even to date, it has not changed a wee bit, and we still use the linear laws of deterministic predictability in a dynamic, non-linear, unpredictable human body. Friends, things have changed now, and with the advent of quantum physics, which has now shown that energy and matter are just but the two faces of the same coin, we have now understood the human body a lot better. It was a few years ago that Dr. Alexis Carrel, a Nobel laureate medical scientist, wrote a book called Man the Unknown, where he said there is no science of man, full stop. Now I have written a book called Man the Known, and I'll tell you what the medical science now believes and should believe in future as the science base of what we do to our patients, hapless patients, because patients have a lot of faith in us and that's what's curing them. Now come back to modern medical quantum physical concept of human body. It was Max Planck who said consciousness is fundamental. Consciousness now is known as the universal energy, which you can call by different names. Some people call it as God, some people call it as nature. But what Max Planck calls is consciousness is fundamental, and all material is derived from consciousness. So human body in my concept is immaterial. It is mental and spiritual. Spiritual doesn't mean God or religion. Spiritual simply means sharing and caring. So the human body, as you say it, is a colony of 50 trillion individual human cells which lived for millions of years as human beings, as individuals, and they were identically living all over the place. Over the millions of years, they have come together to form a colony because of economic reasons, so that they can need not work everything they need not do individually, they can do it collectively. So this colony is called the human body, where every single cell of those 50 trillion cells, they love one another so much that if you now photograph them through what's called the biophoton camera, you can see them all in sync. When you see them in sync and happy, you are healthy. When they are out of sync, you are unhealthy. So disease is an altered state of the energy pattern of the body. So we can now photograph you and get you to see whether you've got any disease. Unfortunately, in modern medicine, we still use the reductionist ideas that body is made out of heart, lung, liver, kidney, brain, etc., etc., like a motor car. And we think if the heart is diseased, I can fix a new heart just like a carburetor or a motor car. It doesn't work that way. The whole body works together. As a matter of fact, if I apply a bit of an ointment here, you will be surprised. The biophotons in my brain change, biophotons in my leg change, which means we are one whole. In short, the word whole is very important here. And the human body is one whole. And treatment has to be holistic. And that's what we call the future of treatment, which is now accepted in American IOM, called whole person healing. WPH is the future. Now I come back to all of us. Now, the cells in me love the cells in you, because you and I are the same energy and different parts of the same whole consciousness. We are bits of individual consciousness. And this follows the Indian philosophy of Sankhya, where if you take a bit from the whole remains a whole, the bit becomes a whole. And this is the concept. And you will be surprised, there is now a mathematical calculation for this, a beautiful mathematical formula, which is very difficult even for great mathematicians to unravel. And it simply says that my cells love your cells. Now supposing I hate you, let us say, I want to destroy you, I hate you. Then what happens is these cells get confused. And if I hate you, my own cells hate my own body. And I get disease. We didn't know why one gets disease. We only knew in linear mathematics how one gets disease. Today, with quantum physics, we can say, why do you get a disease? I have written an article which you can read on the internet. It's called Grudgeitis. You heard about appendicitis, you heard about pancreatitis, you heard about tonsillitis, but this is Grudgeitis. When you grudge others, you want to hate someone. Friends, it is a mind that destroys you. It's the mind that really keeps you going. Now what happens with this sort of a thing is, when once you love another human being, that's what is called spirituality. Spirituality simply means sharing and caring. When I love others, want to share with others, my health improves. That's exactly what Ayurveda said. Aptopasevi bhavet arogyam. If you treat everyone as your near and dear ones, you will be healthy. Now I'll tell you how you get an illness. And when you get an illness, how do you react to the illness? Now when an illness comes, let us say, our concept is, oh, this disease has come. You want to hate the disease? No, no. It's your friend. It has just come with an altered energy. And you've got to love it. You've got to accept it. And then it probably gets healed. Most of us think it's the doctor who cures me, or the doctor who operates. I will ask a simple question to any doctor who says he cures. I want a doctor, the best doctor in India, to do a heart transplant on a dead body, and I want that to heal. A heart transplant, even if the doctor, best doctor does it, heals only when the man is alive. And that is through what is called the immune system. Thank God. God has given us an immune system. Otherwise, our cells love so much that when once you come into this room, all of us would have been one syncytium, one mass of cells. We wouldn't have gone out individually. Individually, we look because of the individual immune systems. But it's only a maya. What we see in this world is maya, which the German scientist who found out E is equal to M, Hans-Peter Due, calls as Wirklichkeit. Wirklichkeit in German means a drama, a changing drama. Suppose I see all of you here. And when I close my eyes, you are not there. So whether you are there or not is only not a reality, but it's a myth. Now this is the concept. If you understand, you can understand this is better. Now when you come to the cell, individual cell, as you see here, this is an individual. Whole individual is this cell. It can do everything that you do. It can breathe, it can understand, it can think, it can eat, it can excrete, everything it does. Now when they come together, they become a body and they do all this together. But over there they found, instead of everybody doing everything, let some people do certain works. So they had different kinds of cells which look different by in shape, but they all work together. So cells in the liver do something which is a metabolic thing, it's a chemistry factory. The heart, it's just a pumping machine or a machine which gives a twist to the blood flow. Or the brain which coordinates the whole body. So there are different kinds of cells, but the working is the same. Even a cancer cell, I'm stressing on this, even a cancer cell works exactly like a normal cell. So cancer is not a disease, cancer is a repair mechanism which has lost its aim, when to stop. Suppose you get a cut. My cut will be, there will be a scar there. Scar is the beginning of a cancer. Supposing that scar overgrows, it becomes a cancer. So all the cells work alike. Now, like if you see the cell wall, this is the most important part of the cell. When the cell, this is a cell wall, individual cell wall, with a bilipid layer. You see those two rows of the fresh limes. They are all the lipid layers. Now, so much so, this doesn't allow anything to go into the cell or come out of the cell. But there are those paths, the red thing called transmembrane protein, which is a channel to go in and out. And above that, you have the antenna to connect with the outside. Now, you are born on the day your mother's ovum meets your father's spermatozoon and you become one protein speck, one cell, which is called the zygote. And that cell, its antenna, gets the connection from the universal consciousness. And you know, the man who was studying this was an atheist. And he was studying this and he found suddenly, oh, this has become now live. And when you die, the consciousness just leaves you and you die. So much so, he described human life as a television picture. You switch on the television, Lata Mangeshkar or the Hema Malini is dancing. Now, after some time you get fed up with the dance, you switch it off, Hema Malini is dead. Now, if you go to the dining room, when your wife calls, and there she is putting on the television, Hema Malini is dancing there. So, human being is like that. When you are born like the television screen, I am like the television screen, I am dancing here. But when I die, I disappear. But I am not in the television screen. Remember that? What is in the television screen is the energy. So we are all energy and we are immaterial. And that energy is the most important thing. And that's what the cell wall does. But the cell wall is a connection. And the connection shows how you can connect with the world. And the cell wall connection is the ligand which connects you with anything that you want. And that's where our whole universe connects with us through that ligand. And if you get disconnected from there, you probably die off. Now, future treatment of diseases, future therapeutics is not with chemicals. Because these chemicals that we put into the system, whatever be it, it's maybe aspirin to statin, the chemicals are reductionist molecules, which work chemistry-wise as dextrorotatory molecules, where the human molecules work levorotatory. So it's a square plug in a round hole. So each time you take a medicine, irrespective of what medicine it is, the body says it is something outside, it's a poison. So the medicine is sent to the liver. So the liver tries to destroy it to the extent possible. Now what remains after the liver destroys comes out, which we teach our students as the first pass effect. After it passes through the liver, what comes out? And that's what we think affects. But in the bargain, every single medicine that we have put in, damages the liver. So it's no surprise that today's audit has shown, especially in United States of America, because we don't have audit in India, that the leading cause of death, one of the leading causes of death is adverse drug reactions, ADR. Coming back to the future treatment is only through energy. And there are various kinds of energy treatments which our ancestors used to do. Lot of occult energies are being used, like pranic healing, reiki, pranayama, yoga, etc., etc. But we have been working on the known three energies, electromagnetic energy, nuclear energy, and probably gravitational energy in some way. And this we have been doing for the last about 15 years. And we have got an organization called the World Academy of Authentic Healing Sciences, where I've got 15 scientists working with me. Now this is the photograph of the energy pattern. This is the thing that we're working on, water for example, homeopathic medicines. This is water structure that is gone. The water structure is something which is very fascinating, it's got loose bonds. And any medicine you put into water, a drop of a medicine you put into water, when it gets into the loose bond, the water structure changes. After that, if you dilute it even a million times, the structure is changed. And that structure has got the energy and that treats. Now this water structure, we use that water structure and also use some simple silver nanoparticles in that. And when the silver nanoparticles get into that, the water becomes absolutely germicidal. Nothing grows in that. And we wanted to see how a salamander in your house, when you cut its tail, the tail grows. If you cut your tail, it won't grow. So we wanted to see whether it grows. And we did it. This was a boy who cut his finger. And this finger was caught in the machine. And the finger got completely cut off. There's no finger left. So what did we do? We didn't touch it. We just covered it with a silver mesh that I showed you and gave a little current to change the polarity. And as you see, 3 days later, the finger becomes... 3 days later, the finger became... Yeah, the finger became cleaner and clearer. 3 days later, the finger became... Almost after 1 month, the finger became normal. And if you want to know what the finger was like... What the finger was like before... That's where the finger was and that's where the finger today is. So we have now been using it for various other things. Like for example, when a policeman in Chennai came with this big pus, bag of pus with his diabetic foot, the doctors wanted to cut off the foot. But this man refused because he said, if you cut off the foot, next life I will not have a foot at all. So he wanted to do something or die. So we cleaned the whole thing and put our energy machine into it. Next slide. And you see after 3 months he has got a normal foot. And here is another lady of mine who has got a blood pressure of 240 by 140. And she had a block in this vessel here. Whole aorta was blocked below the kidney. You can see there's no runoff at all. And the kidneys were so small. So I put the machine there. It's just like a cell phone. And 3 months later what you see is lot of new vessels have grown. The kidneys have become normal. Her blood pressure came down to 120 by 80. And she is very happy. She's walking about. Now we have been doing this for various things. Starting from cancer to common cold, you can use energy and we are refining it. Our job is to authenticate simple healing methods in any system, be it Ayurveda, homeopathy, or any system for that matter. Because all systems simply mean something that you help the patient to heal. And who heals? The patient himself heals. Why he heals that? His body naturally has to heal. I'll give you an example. Man gets a heart attack, God forbid. Now what happens is, at the center of the heart attack, the cells die. The minute the cells die, if nobody does anything and no doctor interferes, the neighboring cells say, oh my God, my friend has died. They love one another so much. They slip out and come there and occupy. There's a second stage. Cell death is stage one. The second stage is cell slipping. When the cell slips out, there's a mother holding the cell, which is cement, which we call as collagen. The mother says, where has my son gone? And the mother knows my son would never go for anything other than helping others. He must have gone to help somebody. I will also help him. So it produces more collagen. So fibroblastic proliferation. You've got a very strong scar. Now the cells far away, they can't do that. They feel bad. I have not done anything. So they say, okay, let me become stronger. So they become hypertrophied. Four things happen. Cell death, cell slipping, fibroblastic proliferation and hypertrophy. These four things, what is called remodel the whole heart. So if you get a heart attack, and if you are lucky not to die, because 60% of people who get a heart attack don't even get to see next second. They die. The remaining 40% bakras only we do all kinds of things. But even those, by chance, they don't come to the hospital and still survive. They probably get a beautiful heart. A study in Bristol and Sheffield showed that heart attack patients with good risk, which means heart attack patients who have no pain and who are alive, are better off left at home then taken to the hospital and then looked after, because mortality is much better left at home. Now this is because the body heals itself. And this healing is a process which can be helped by our lifestyle. So the future must be for wellness lifestyle, which Ayurveda says, swastasya swastha rakshitam. Preserve the health of the well. And this is what I call as a wellness concept, which requires simple things. One, most important thing is the mind. The mind filled with universal compassion. Mind without negative feelings, no hatred, no jealousy, no greed, no pride, no anger. Because you don't have to be pride, because for every cell in your body, you have 9 cells which are germ cells, not your cells. Because germs are a part of us. So how can you say, I am somebody, I am nobody. Even to say, I must get 9 germ cells permission for one cell of mine. So when once you know that, you become so humble. And humility in Indian concept is the virtue of education. And humility is a health giving thing. So if you are humble and genuinely compassionate, you will be very healthy. Next thing is, eat in moderation. Whatever you want to eat, eat in very, very less, and then every day have some exercise. And do something for others. This is the most important thing. Shamavad, aptoposevi bhavet arogyam. And data, be a giver. Human body is not a machine made out of different parts. Human body is a colony of happy 50 trillion cells with 2.5 trillion germs, of all kinds of germs. So friends, it's very simple. Again, healthy living is simple living, high thinking, loving others, and trying to do something for society. Thank you very much.
जैसे कि हमारे शास्त्रों में यहां पर जो इन्होंने कहा कि हमारी जो परिस्थिति है, बाह्य रूप से जो परिस्थिति है वो निर्भर करती है हमारी आंतरिक स्थिति पर. इसलिए यदि आपको याद होगा कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि यदि भोजन जब आप ले रहे हो तो शांति से लो, बैठकर शांति से भोजन करो और भोजन करते समय और कुछ मत करो. क्यों ये सब बताया जाता था? क्योंकि आप जिस मानसिक स्थिति में उस भोजन को ग्रहण करोगे वो भोजन उसी प्रकार से या तो पचेगा या आपको अपचन रहेगा उसका. जैसे आपको यदि मैं एक उदाहरण से समझाऊं, पेन. अब ये जैसे ही आप लोगों के दृष्टि के सामने ये वस्तु आती है तुरंत आप इसे क्या कहते हो? पेन है ये. अब मान लो इसी पेन को मैं कुत्ते के सामने दिखाता हूं कि मान लो एक कुत्ता यहां से आ जाए बीच से और वो कुत्ता ये पेन को देखता है. तो कुत्ता जब ये पेन को देखता है तो कुत्ता क्या करता है? इसे चबाना शुरू करता है. क्योंकि कुत्ते की जानकारी के अनुसार वो कोई भी वस्तु को पहले चबाकर देखता है कि ये मेरे लिए उपयोगी है या नहीं. और वो मानता है कि ये पेन उपयोगी है. कैसे उपयोगी है? चबाकर. इट इज एन ऑब्जेक्ट टू च्यू. चबाने वाली वस्तु है ये. अब यदि मैं पूछूं आपसे कि कौन सही है कौन गलत है, आप लोग इस वस्तु को पेन मानते हो, एक कुत्ता इस वस्तु को चबाने की वस्तु मानता है, आप सही हो या कुत्ता सही? दोनों सही हैं. हाँ, दोनों सही हैं. हाँ, आप सही हो, दोनों सही हैं. क्योंकि उस कुत्ते की मनस्थिति, या यदि हम कहें कि उसका जो सॉफ्टवेयर है, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये क्या है? ये हमारा सॉफ्टवेयर है. ये शारीरिक शरीर क्या है? ये हार्डवेयर है. तो उसका जो सॉफ्टवेयर है, सूक्ष्म शरीर है, जैसे ही मैंने ये पेन दिखाया तो आप जो पहले से इसका अनुभव कर चुके हो आपके जीवन में, किसने अनुभव किया है? आपके सूक्ष्म शरीर में इसकी जानकारी स्टोर्ड है, पेन की जानकारी स्टोर्ड है. तो जैसे ही मैंने ये पेन अपने हाथ में उठाया तो जो आपके मेमोरी बैंक में पेन के विषय में जानकारी अब तक थी वो तुरंत यहां से पेन सामने आया, आपके मेमोरी बैंक से पेन की जानकारी सामने आई और दोनों का मिलन हुआ और फिर आप तुरंत बोल दिए ये पेन है. और पेन का क्या इस्तेमाल है, ये सब पूरा उसका जो फोल्डर है वो फोल्डर बाहर आएगा. कौन सा फोल्डर? पेन का फोल्डर. अब अगर मैं ये बाहर निकालूं, ये रिमोट, तो जिनको इसकी कोई जानकारी नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे बीच में या शुरुआत में वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पहली दफा यदि कोई देख रहा है इसको और मैं पूछूं कि ये क्या है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा कि दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पेपर वेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, पेपर उड़ेना। तो क्योंकि किसी की जानकारी नहीं है इसलिए तुरंत उसका जो रिएक्शन है इस वस्तु के प्रति उतना नहीं होगा शीघ्रता से जितना कि इसके साथ होगा। तो कुत्ते के जहन में जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, उसने उसके जीवन में, उसके जीवन काल में उसने केवल वस्तुओं को चबाया है। छोटे बच्चे भी यही करते हैं ना, जो भी उनकी बचपन की जो अवधि होती है जीवन काल की, उसके अंदर वो भी वही करते हैं, जो भी वस्तु दो उसको मुंह में लेकर चबाना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी वस्तु हमारी आंखें देखती हैं, हमारी बाह्य इंद्रियां उसको एक तरीके से अनुभव करती हैं, परंतु जो हमारा पूर्व अनुभव उस वस्तु से हुआ है, चाहे कई बार वो वस्तु सामने आए या न आए, जैसे अब इसी पेन का उदाहरण, इसको थोड़ा और हम इलैबोरेट करते हैं। मान लीजिए आपको पेन खरीदना है और आप पेन खरीदने के लिए घर से निकलते हो, तो अब सामने पेन नहीं है, घर पर पेन नहीं है, कहीं पर भी वो वस्तु पेन आपको अब तक प्राप्त नहीं हुई है, दिख नहीं रही है, परंतु आपने मन में सोचा कि ये स्टेशनरी की दुकान पर पेन अवश्य होगा, तो आपने पहले उसको विजुअलाइज किया है कि नहीं। क्या क्या विजुअलाइज किया? केवल पेन विजुअलाइज नहीं किया आपने, आपने वो मार्केट जहां पर वो स्टेशनरी की दुकान है, फिर वो स्टेशनरी की दुकान, फिर वो स्टेशनरी की दुकान के अंदर आपको किस प्रकार का पेन चाहिए उसको आपने विजुअलाइज किया और फिर आप निकले। तो कहने का आशय ये है कि वो पेन फिजिकली आपके हाथ प्राप्त होने से पहले आपके मन में आपने प्राप्त किया। अब केवल किसकी देरी है, वो जो आपने मन में संकल्प लिया है उस पेन को खरीदने का, बस अब वो आप उसको मटेरियलाइज, जिसको बोलते हैं, जाकर उस करे करोगे आप। तो मैं ये सब साधारण से उदाहरण दे रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि क्या बड़ी बात है, क्योंकि इसी लॉजिक को हम हमारे पूरे बड़े बड़े जो निर्णय जीवन के जब हम लेते हैं, इस लॉजिक को यूज करें तो हमारे जो परिस्थितियां हैं, हम हमारे मनस्थिति से हमारी परिस्थिति बदल सकते हैं। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तो अब हम कुछ उदाहरण लेंगे हमारे शास्त्रों से, जहां पर परिस्थिति बदली और परिस्थिति के साथ साथ कैसे इन महानुभावों ने अपनी मनस्थिति बदली। तो यह है सबसे पहला उदाहरण, अवंती ब्राह्मण। 11वें स्कंद में इसका उदाहरण है श्रीमद् भागवत के, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ये अवंती ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे हैं। तो सोचिए यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसका उदाहरण दे रहे हैं तो कितना महत्व उन्होंने दिया होगा अवंती ब्राह्मण के व्यक्तित्व को। तो अवंती ब्राह्मण, ये अवंती देश उज्जैन, जिसको अब हम उज्जैन कहते हैं, अवंतिका, तो वहां का ये ब्राह्मण था। और ये एक समय बहुत धनवान था, ऐश्वर्यशाली था, परंतु इसके व्यवहार कुछ इसके ऐश्वर्य के अनुसार नहीं थे। कंजूस किस्म का व्यक्ति था ये, धन होने के बावजूद ये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो धनराशि नहीं निकाल के देता, उसके वजह से हुआ क्या कि धीरे धीरे बहुत से शत्रु ये बनाते गया, जैसे डॉक्टर हेगड़े बोल रहे थे ग्रजाइटिस, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड उन्होंने यूज किया ग्रजाइटिस, तो शत्रु उसने निर्माण, लोग उससे शत्रुता करने लगे धीरे धीरे, उसके खुद के परिवार वाले, इस हद तक कि उसका सारा धन लुट गया। एक दिन लुटेरों ने लूट लिया, जितना थोड़ा बाकी था वो रिश्तेदार परिवार वाले उन्होंने लूट लिया कि ये ऐसा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, इतना धनवान, कुछ ही दिनों में ये सड़क पर आ गया। तो अब एक भिखारी का जीवन, और ऐसा जीवन कि न केवल बाह्य रूप से इसके पास कुछ नहीं था अपने भरण पोषण के लिए, बल्कि अब जितने शत्रु इसने बना लिए थे जब ये धनवान था, ये सारे अब मौका देखकर इसके ऊपर टूट पड़े। और क्या क्या नहीं किया करते थे इसके ऊपर अत्याचार। ये एक सन्यासी बन गया था, इसने सोचा कि अब मेरे परिवार वाले उन्होंने मुझे बहिष्कृत कर दिया है, रिश्तेदार, समाज इत्यादि, तो फिर क्यों ना मैं एक सन्यासी का जीवन जीऊं। तो वहां से परिवर्तन हुआ, वो एक सन्यासी का जीवन जीने लगे, और सन्यासी के जीवन के रूप में उनके पास जो भी एक कमंडलू, जिसके अंदर जो भी मधुकरी उनको प्राप्त हो जाती, भिक्षा प्राप्त हो जाती, उससे अपना जीवन निर्वाह करते। तो लोग अब बदला लेने के लिए वो क्या किया करते कि इसके सन्यास कमंडलू को या तो छीन लेते, यदि कोई गलती से कोई भिक्षा इसको प्राप्त हो जाती तो वो भिक्षा पर थूक देते, मलमूत्र त्याग देते, जानबूझ के बदला लेने के लिए इसके साथ। अब आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति एक समय इतना ऐश्वर्य का जीवन जिया है और अब इतना तिरस्कृत जीवन जी रहा है, कल्पना कीजिए क्या मनस्थिति होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की। ये सब मैं इसलिए इतना इलैबोरेटली सुनाया ताकि आपको समझ में आए कि क्या मनस्थिति होगी ऐसे व्यक्ति की। यदि हमारे साथ खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो तो हमारी मनस्थिति कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण अवंती ब्राह्मण का उदाहरण उद्धव जी को सुनाते हुए बोलते हैं कि इतना सब कुछ इसके साथ हो रहा था, ऐसे दौर से गुजर रहा था ये अवंती ब्राह्मण, परंतु फिर भी जब इसे पूछा गया कि भाई तेरी ये जो दुर्दशा हुई है, इस दुर्दशा का कारण कौन है, Whom are you going to blame for your miserable situation? ये प्रश्न उस ब्राह्मण से पूछा गया अवंती के। तब एक सुंदर श्लोक में ये कहता है कि मेरे दुर्दशा का कारण कौन है, जानना चाहेंगे आप? नायम जनो में सुख दुख हेतुर। सबसे पहले वो कहते हैं न अयम, ये जन, जन अर्थात जनता, और जन अर्थात स्वजन भी, न तो ये जनता न मेरे स्वजन, नायम जनो में सुख दुख हेतुर, न देवतात्मा गृह कर्म काल, न देवता। यदि कोई कहे कि अरे शनि देवता इत्यादि वो तुम्हारी साढ़े साथी चल रही है शायद, तो वो तुमसे अप्रसन्न है, तुमने शायद किसी देवता की उपासना ठीक से नहीं की होगी, इसलिए वो देवता बदला ले रहे हैं, न तो मेरे स्वजन, न ये समाज, न देवता, न ग्रह, न कर्म। वो कह रहे हैं मेरे कर्म भी नहीं। कोई कहेगा हो सकता है कि तुम्हारा काल, वो तुम्हारे साथ नहीं है, बुरा काल चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, वो कहते हैं न काल, काल भी नहीं, नायम जनों में सुख दुख हेतुर, न देवतात्मा गृह कर्म काल, मन परम कारण मामनंती। ये है तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। परम कारण क्या है? मेरी दुर्दशा का परम कारण है मेरा मन। जब मैं अपने मन से मेरी परिस्थिति को दुखद मानता हूं तो वो दुखद बनती है, समझे? जैसे मैंने एक हमारे श्रीमद् भागवत क्लास में ये मेरे साथ वाक्य हुआ सुनाया था। मैं जब हमारे वाड़ा के इको विलेज में था, सुबह का समय जब मेरा पूरा हुआ, आंख बंद कर मैं सुबह का जो वातावरण है उसका अनुभव कर रहा, और आंख बंद कर वो सुबह का वातावरण, कुछ 7:15 बजे थे और सब जगह शांति, कोई ट्रैफिक की आवाज नहीं, कोई किसी इंडस्ट्री की कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, एक चिड़िया चहक रही थी। तो आंख बंद कर मैं उस चिड़िया की आवाज पर गौर कर रहा, तो एक छोटा सा साक्षात्कार ये आया, ये प्रश्न मैंने पूछा। चिड़िया की आवाज थी इसलिए मैं सुन रहा था, या मैं सुन रहा था इसलिए चिड़िया की आवाज थी? कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग? जैसे कि आप लोग यहां पर बैठे हो, इसलिए आप मौजूद हो, या मैं आपको देख रहा हूं इसलिए आप मौजूद हो? चिड़िया की आवाज थी इसलिए मैं सुन रहा था, या मैं सुन रहा था इसलिए चिड़िया की आवाज थी? इसका अर्थ क्या है कि ये जो हमारा मन है, ये मन, जैसे कि मैं जो अभी बोल रहा हूं आपको, तो मेरी आवाज है इसलिए आप सुन रहे हो, कि आप सुन रहे हो इसलिए ये आवाज है? क्योंकि होता क्या है कि आवाज तो यहां गीतामृत कार्यक्रम में ये आवाज तो शुरू हो जाती है 7:30 से, परंतु हमारा मन वो अलग अलग जगह पर घूम फिर कर बीच बीच में, जैसे होता ना एक कई बार वो रेडियो चैनल, पहले वो रेडियो हुआ करते थे ट्रांजिस्टर टाइप बड़े बड़े, तो उसके अंदर कितने सारे वो रेडियो स्टेशंस होते थे, और कभी कभी यदि वो ट्रांजिस्टर खराब हो जाए तो बहुत सारे रेडियो स्टेशन एक साथ चलने लगते थे। हमने बचपन में स्कूल में इसके ऊपर एक ड्रामा भी किया था कि 4 रेडियो स्टेशन एक साथ बज रहे हैं, उसके अंदर एक स्टेशन पर कुकिंग शो चल रहा है, एक स्टेशन के ऊपर क्रिकेट मैच चल रहा है, एक स्टेशन के ऊपर कोई योगा सिखा रहा है, एक स्टेशन पर समाचार आ रहे हैं। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने टमाटर काटे क्योंकि अभी वो जो समाचार का था वो मिक्स हो गया जो कुकिंग शो चल रहा था उसके साथ। तो जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने टमाटर काटे, अब आप उसको सर पे रख के पैर ऊपर करो, अब योगा चैनल चालू हो गया। तो हमको हंसी आ रही होगी, लेकिन हमारा माइंड बहुत बार गीतामृत कार्यक्रम में भी यही करता है कि यहां पर हम परिस्थिति मनस्थिति ये सब कर रहे हैं, अचानक मन चला गया इंडिया पाकिस्तान मैच, या फिर बाहर क्या हो रहा है, बच्चे कितने आवाज कर रहे हैं, बाहर जो लोग खड़े हैं वो लोग कब तक खड़े रहेंगे, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है काउंटर कब लगने वाला है प्रसाद का। तो अवंती ब्राह्मण कहते हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा गृह कर्म काल मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत यत। ये है संसार चक्र। इस संसार के अंदर उनका साक्षात्कार ये है कि हर समय हम उंगली उठाकर दोषारोपण कर देते हैं, मेरे जीवन की दुर्दशा या जो भी दशा है वो फलान ढिकान व्यक्ति के वजह से है, ये व्यक्ति के वजह से है, ये समाज के वजह से है, ये देश के वजह से है, सरकार के वजह से है। परंतु अवंती ब्राह्मण कहते हैं, नहीं, ये सब कोई कारण नहीं है। कल्पना कीजिए कि जो उनके कमंडलों में थूक कर जा रहा है, चेहरे पर थूक कर जा रहा है, उसे भी वो कारण नहीं मान रहे। अपने मन को वो परम कारण मान रहे हैं उनके दुर्दशा का। तो ये है परिस्थिति एवं मन स्थिति। अर्जुन का उदाहरण कि अर्जुन ने प्रथम अध्याय में जो अपनी परिस्थिति के विषय में कहा और उस परिस्थिति के साथ, या तो ये हम कहें कि परिस्थिति को देखा और मनस्थिति बदली। क्या परिस्थिति? अपने ही स्वजनों को सामने प्रतिद्वंद्वी के रूप में जब देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन की मनस्थिति बदली। और भगवान ने किया क्या? भगवान ने जो पूरे 18 अध्याय सुनाए अर्जुन को, भगवान ने अर्जुन की परिस्थिति नहीं बदली, मनस्थिति बदली। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो द्वंद्व तुम देख रहे हो कि वो तुम्हारे स्वजन हैं, तुम कैसे उनको मारोगे, तुम्हारे गुरुजन हैं, पितामह इत्यादि, कैसे तुम उनका रक्त बहाओगे, तो तुम्हारे मन में ये सारे जो द्वंद्व आ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये द्वंद्व तो रहेंगे, ये द्वंद्व मेरी प्रकृति ने पैदा किए हैं। किसने पैदा किए? भगवान की प्रकृति ने पैदा किए हैं। तो मान लो अर्जुन फिर भगवान से कहें, अब आप बोल रहे हैं आपकी प्रकृति ने ये द्वंद्व पैदा किए हैं, सर्दी गर्मी हार जीत इत्यादि, तो फिर आप ही कर दो ना, द्वंद्वों का कुछ उसका समन्वय कर दो। भगवान कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारा सारथी होऊंगा, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी होऊंगा, और मैं बोल रहा हूं कि मेरे अधीन ये प्रकृति है जिसमें ये सारे द्वंद्व हैं, परंतु तुम्हें सहन करना है। ताम स्थितिक्षस्व, मैं इन द्वंद्वों को तुम्हारे लिए मिटाऊंगा नहीं। तो बेसिकली भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा क्या कहा? अर्जुन, परिस्थितियों को मैं नहीं बदलूंगा, हां मैं मदद करूंगा तुम्हारी, तुम्हारी मनस्थिति को बदलने के लिए, और वो है गीतामृत। युधिष्ठिर महाराज, अब देखो युधिष्ठिर महाराज और वो प्रसिद्ध जो घटना है, युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को भेजा गया, भीष्म पितामह विदुर ये भेजते हैं टेस्ट करने के लिए कि अगला राजा बनने लायक योग्य कौन है। तो दुर्योधन को भेजते हैं हस्तिनापुर में, जाके ढूंढ कर लाओ तुमसे बेहतर व्यक्ति कौन है। युधिष्ठिर महाराज को भेजते हैं, जाकर ढूंढ कर लाओ तुमसे अधम कोई अगर मिलता है तुमको। दोनों खाली हाथ लौटते, दुर्योधन कहता है मुझे मुझसे अच्छा कोई मिला ही नहीं, मुझसे अच्छा हस्तिनापुर में कोई है ही नहीं। और युधिष्ठिर महाराज भी खाली लौटे हाथ, उन्होंने कहा कि पूरे हस्तिनापुर में मैं ढूंढ कर मैंने देखा, मुझसे ज्यादा अधम मुझे कोई नहीं मिला। और महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को कुएं से पानी निकालते हुए देखा, और उस दिन एकादशी थी। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि हाँ, ये शायद पानी निकाल रहा है, मतलब पीने के लिए निकाल रहा है। अब सोचिए उस समय का एकादशी का स्टैंडर्ड, सब निर्जल किया करते थे, तो सब मतलब पूरा हस्तिनापुर एकादशी निर्जल कर रहा है, तो कोई पानी निकाल रहा है मतलब अपनी एकादशी तोड़ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि ये युधिष्ठिर महाराज के मन में दोष दृष्टि सी थोड़ी सी आई कि ये एकादशी तोड़ रहा है, पानी निकाल रहा है। तब उसने वो भरा हुआ जो भी वो मटका पानी का, उसने अपने पशुओं को दया जाकर दिया पीने के लिए। तब युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, अरे मैं दोष दृष्टि कर रहा था और ये व्यक्ति कुछ और निकला, मतलब मुझसे ज्यादा अधम कोई नहीं पूरे हस्तिनापुर। फाइनल उनका निष्कर्ष। तो युधिष्ठिर महाराज उनको जब और पांडवों को जब वनवास हुआ, तो ये बहुत ही एक मार्मिक प्रसंग है जहां पर युधिष्ठिर महाराज और पांडव, जो कि वो लोग किसके काबिल थे और क्या मिला उनको, वनवास, सब कुछ उनका लूट गया। तो सब कुछ लूटने के पश्चात अब वो लोग वन की ओर निकल रहे हैं, वनगमन लीला उनकी प्रारंभ हो रही। तो युधिष्ठिर महाराज वो विलाप कर रहे हैं। साधारणतः यदि किसी को 13 वर्ष वनवास मिल रहा है तो किसके लिए विलाप करेगा, स्वयं के लिए विलाप करेगा ना। तो युधिष्ठिर महाराज का विलाप किसके लिए था? युधिष्ठिर महाराज का विलाप था कि अब मेरा सब कुछ छिन गया है, मैं जो रोज इतने दान दक्षिणा किया करता था, इतने ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था, अब मैं वो 13 साल कैसे करूंगा। वो किसकी चिंता कर रहे हैं? वो जिन दिन दुखियारों की मदद किया करते थे उनकी चिंता करते हुए विलाप कर रहे हैं। इसको कहते हैं परिस्थिति के ऊपर मनस्थिति का काबू। ये है युधिष्ठिर महाराज। और फिर हमारे पास उदाहरण है भगवान श्री राम कि एक दिन पहले उनको बताया गया, प्रभु श्री राम को बताया गया कि आप अयोध्या पति बनने वाले, अयोध्या के नरेश बनने वाले हो। अब देखिए, प्रभु श्री राम ने कोई एप्लीकेशन नहीं डाला था कि मुझे आप बनाइए, हाँ, कोई वो अर्जी नहीं डाल रहे थे, अर्जी पे अर्जी नहीं डाल रहे थे कि मुझे आप नेक्स्ट राजा बनाइए। यहां पर इन सब का निर्णय था, दशरथ इनका निर्णय था, उनके पिताजी का निर्णय था। ठीक है भाई, आपने निर्णय किया है, आपका ये आदेश है, ठीक है। और वही दशरथ जिन्होंने निर्णय लिया, वही फिर प्रभु श्री राम को कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आप राजा नहीं बनने वाले हो। अब वहां तक ठीक था। अभी देखिए, साधारणतः कोई यदि भौतिकतावादी व्यक्ति होता कलयुग का, उसको आप बता दो कि भाई तुम्हें हम ये कंपनी का ये बना देंगे, सीईओ बना देंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे, और वो अब पूरी तैयारी में उसने कार्ड वगैरह छाप लिए, सबको बता दिया, न्योता दे दिया कि भाई मेरा इनॉग्रेशन है, मेरे को अपॉइंट किया जा रहा है, आप लोग सब आइए, और फिर रात में इन्फॉर्म कर दिया उसको कि भाई नहीं नहीं हमने प्लान हमारा निर्णय चेंज कर दिया, सॉरी सॉरी अरे हली सॉरी हाँ भाई सॉरी, और क्या करें, नहीं बना रहे आपको तो वो तो केस फाइल कर देगा, मीडिया के पास जाएगा, आजकल वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहां पर अच्छा इतना ही नहीं, उसके ऊपर क्या बताया गया कि न केवल आपको राजा नहीं बनाने वाले, बल्कि 14 साल आपको जाना है वन में। तो 14 साल वन में जाना है और एक वनवासी का जीवन जीना है। ऐसा नहीं कि वन में जाकर कुछ दशरथ अयोध्या से कुछ उनके इंजीनियर्स को भेजे कि भाई ये जिस वन में जाएंगे वहां पर जाकर इनके लिए सेटअप करना, या कोई किराए का आश्रम मिल जाएगा कहीं पे, अच्छा उसको थोड़ा आलिशान बना देना। वनवासी का जीवन, वनवासी का व्रत। तो अब देखिए, एक रात में परिस्थिति में बदलाव, एक रात में परिस्थिति में बदलाव। कोई साधारण व्यक्ति होता तो हार्ट अटैक आ जाता सबसे पहले। तो नजरिया क्या था, जब कौशल्या से मिलने जाते हैं तो कौशल्या को अब तक ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो कौशल्या से प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं आपको खुशखबर देने आया हूं हे मां। क्या खुशखबर देने आया हूं? कि हमारे पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया। और कितने सारे वनों का, जितने वनों में मैं भ्रमण कर सकूं उन सारे वनों का राजा बनाया। मैं तो सोच रहा था मेरे पिताजी खाली अयोध्या का मुझे राजा बनाने वाले थे, परंतु हमारे पिताजी कितने दयालु हैं, और विशेष रूप से कैकेयी कितने दयालु हैं ये दोनों, कि इन्होंने मिलकर मेरे विषय में, मेरी समृद्धि के विषय में इतना सोचा कि मुझे वन का राजा बनाया। और फिर वो कैकेयी को धन्यवाद देते हैं कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि हाल ही में सीता के साथ मेरा विवाह हुआ और यहां पर पिताजी और बाकी सब मिलकर मुझे राजा बनाना चाह रहे थे, तो अभी हाल ही में विवाह हुआ है और ये पूरे राज्य की जिम्मेदारी, तो मैं वही सोच रहा था, सीता की भी एक शिकायत थी, फिर हम कैसे समय बिताएंगे, एक वैवाहिक जीवन कैसे हमारा अच्छे से चलेगा। तो अब कैकेयी ने ये पूरा योजना हमारे लिए बना दी ताकि 14 साल मैं और सीता बस अब एक ऐसा दाम्पत्य जीवन एक साथ बिताएंगे कि हमें कोई मैनेजेरियल कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आने वाले हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि जय श्री राम, आप ही कर सकते हो। हाँ वही कर सकते हैं, लेकिन वो हमको सिखाते हैं। वो हमको क्या सिखाते हैं कि जब परिस्थिति ना बदले तो मनस्थिति बदलो, वो ये सिखाते हैं। अब ये एक परिवार स्कॉटलैंड का, द क्लार्क फैमिली, सच्ची घटना है। तो ये 7 मेंबर इस फैमिली के, स्कॉटलैंड के, यूके में है स्कॉटलैंड। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन एक उद्देश्य के लिए लगाया, और जो भी इन्होंने मेहनत की, पूरे परिवार ने मिलकर धन वगैरह इकट्ठा जो किया, तो उद्देश्य इनका ये था कि ये अपने जीवन काल के एक समय स्कॉटलैंड छोड़कर पूरा परिवार जाकर यूएस में सेटल होगा, ये इनका उद्देश्य था। तो इन्होंने अपने जीवन की पूरी धनराशि, सब कुछ जो भी इन्होंने इकट्ठा किया था, सब पूरी तैयारियां की, इतने वर्षों से जो ये तैयारी कर रहे थे सब कुछ किया, और फिर इन्होंने सोचा कि यदि हम छोड़कर अमेरिका जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक ऐसे लग्जरी क्रूज में जाएं, एक लग्जरी जहाज पाने का। तो अपनी सीट बुक करी, बहुत पैसे उसके लगे, बहुत महंगा टिकट था उसका, और उसके उनके जाने के 7 दिन पहले इनके बेटे को कुत्ते ने काट लिया। अब देखिए, भारत में तो हम सुनते हैं कि कुत्ते आए दिन काटते रहते हैं यहां वहां किसी को, परंतु वहां विदेश में ये बहुत कम सुनने में आता है, कुत्ते ने काट लिया। तो कुत्ते ने काट लिया, अब कुत्ते ने काट लिया तो जो बेटा है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, उसको रेबीज हो गया, इनको अब 2-3 दिन में निकलना है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने कह दिया, नहीं हम आपको नहीं भेज सकते, क्वारंटीन उनको कर दिया, नहीं जा सकते आप। हाँ, आप लोग जा सकते हो, आपके बेटे को यहां रुकना पड़ेगा अगर आपको जाना है। अब बेटे को कैसे छोड़ के जाएंगे? तो कोसने लगा है व्यक्ति, भगवान को कोसने लगा, क्योंकि ये बहुत धार्मिक किस्म का व्यक्ति था, पूरे परिवार बहुत धार्मिक परिवार था, भगवान को कोसने लग गया। और फिर इसने अपनी आंखों के सामने वो जहाज को जाते हुए देखा, लग्जरी क्रूज को जाते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, जिसमें इसने इतने अपने पैसे डाले थे, टिकट लिया था, तैयारियां की थी, और उसके 2-3 दिन बाद ये मिस्टर क्लार्क जिन भगवान को कोस रहा था उन्हीं भगवान को जाकर शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि वो क्रूज लाइनर था टाइटैनिक। टाइटैनिक, इसने टाइटैनिक में सीट बुक करी थी अपने पूरे परिवार की, और जब इसे पता चला कि जो यूके में साउथहैम्पटन वहां से जो टाइटैनिक निकला, और कुछ ही दिन पश्चात टाइटैनिक का क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। तो कहने का आशय ये है कि भगवान कई बार हमारी स्थिति या मनस्थिति को ठीक करने के लिए कुत्ते भेजेंगे। और वो भी काटने वाले काटने वाले कुत्ते भेजेंगे। तो यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसे आस पड़ोस के लोग आए जो हमें कुत्तों की तरह काटें, तो समझ जाना चाहिए, यदि आप प्रामाणिक हो और आप प्रामाणिक होने के बावजूद यदि कोई आपको काट रहा है बेमतलब, तो समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको किसी टाइटैनिक से बचा रहे हैं। तो इसलिए हम आते हैं कौन से मुद्दे पर, परिस्थिति जब ना बदले तो अपनी मनस्थिति बदलो। तो अब हम एक लेवल ऊपर आपको ले जाना चाहेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये सबसे ऊंचा लेवल है, ना, इससे भी ऊंचा एक लेवल है, जानना चाहेंगे आप लोग इससे ऊंचा लेवल। अपनी मनस्थिति से दूसरों की परिस्थिति बदलो। ये पिछले लेवल से एक लेवल अप. अच्छा, अब पहले हम इसको क्लैरिफाई कर दें कि हमारी मनस्थिति प्रामाणिक होनी चाहिए, तब जाकर हम अनुकूल भाव से किसी की, नहीं तो बहुत लोग अपने मनस्थिति से दूसरों को उनकी परिस्थिति बिगाड़ भी रहे हैं. एक बार एक व्यक्ति, वो एक हलवाई की दुकान से रोज दो रसगुल्ले खरीदता. उसको इस दुकान के रसगुल्ले बहुत पसंद थे, तो रोज वो अपने ऑफिस से जब अपने घर की ओर निकलता तो वो इस दुकान से दो रसगुल्ले खरीदता. और जिस समय ये अपने ऑफिस से निकलता, रसगुल्ले की दुकान या हलवाई की दुकान पहुंचता, और वहां पर वो जो शाम का समय, तो वो जो हलवाई का बेटा, वो हलवाई का बेटा हर समय गल्ले पे बैठा रहता. तो इसने एक बार उस हलवाई के बेटे को पूछा कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले तुम्हारे अंडर रहते हैं. हाँ, कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे अंडर ये रसगुल्ले रहते हैं. मैं तो रोज दो ही ले पाता हूं, और दिन भर इतना वो देखता, इतने सारे बने हुए पड़े हुए वहां पे, उसकी प्रदर्शनी है वहां पर रसगुल्लों की, तो कितने तुम सौभाग्यशाली हो. हाँ, तो बेटा बोलता है, अरे क्या सौभाग्यशाली अंकल जी, क्यों क्यों नहीं, तुम्हारे पिताजी तुमको देते नहीं है रसगुल्ले. अरे कहां, पिताजी पूरे गिन के रखे हुए हैं यहां पे, एक रसगुल्ला भी कम हो जाए वो पिताजी सब गिन के रखते हैं यहां पे, एक भी कम नहीं होना चाहिए. तो फिर क्या, चूस चूस के रख देता हूं मैं. अब वो बेचारा जो इतने अरमानों से वो रसगुल्ले रोज खाता था, तो हम इस प्रकार की परिस्थिति का बदलाव नहीं बता रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि हमारी जब ऐसी मनस्थिति, जिसकी हम पिछले स्लाइड्स में चर्चा कर रहे थे, जब हम ऐसी मनस्थिति पर पहुंच जाते हैं कि उस शुद्ध प्रामाणिक मनस्थिति से हम दूसरों की परिस्थिति में बदलाव लाएं. हमने पिछले बुधवार को चर्चा की थी कि कैसे हम अपने स्वयं की परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हैं मनस्थिति के वजह से. अब यहां पर लेवल ऊपर हम गए हैं कि वो व्यक्ति, वो महानुभाव जिन्होंने अपनी मनस्थिति के वजह से दूसरों की परिस्थिति में बदलाव लाए. बहुत सुंदर कोट है, ध्यान से पढ़िए. When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. जैसे हमारे मंथन कार्यक्रम में मैं ये एक उदाहरण दे रहा था कि एक लड़का लिफ्ट मांगने के लिए सड़क पर खड़ा था, और एक आलीशान गाड़ी जो उसका मालिक था, उसने वो बच्चे को लिफ्ट दिया. तो बच्चा वो आलीशान गाड़ी को देख रहा है और एकदम प्रभावित हो रहा है. तो ये मालिक इस बच्चे को देख रहा है, गाड़ी का मालिक, और बोलता है, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे होगे, मैं बताता हूं, ये गाड़ी मेरे भाई ने मुझे दी मेरे बर्थडे गिफ्ट के रूप में. तो मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो, काश मेरा भी एक ऐसा भाई होता, यही सोच रहे हो ना. बच्चे ने कहा, नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि काश मैं ऐसा भाई किसी के लिए होता। When God gives you financially, don't raise the standard of living, but raise the standard of giving. तो करना क्या है, हमें लेना बैंक नहीं, देना बैंक बनना है, देना बैंक। पैसे हमारे होंगे देना बैंक में, लेकिन जीवन होता है लेना बैंक। मुफ्त की चंदन घिसमेरे नंदन। तुरंत मन में क्या विचार आता है? हाँ नहीं, आजकल तो दूसरे विचार आते हैं। लेकिन हाँ भाई, मेरा फेवरेट हीरो, क्या अदाएं हैं इसकी, क्या एक्टिंग है, क्या दिखने में स्मार्ट हैंडसम है कि नहीं, सब लोग फिदा हैं ऐसे हैंडसम हीरो पर। ये नहीं तो दूसरा, एक से बढ़कर एक, ये खान नहीं तो ये दूसरा खान, सौंदर्य के खान है। भाई चाहे कितने भी पुलिस की वर्दी पहन लो, हवालात में जाते जाते बच गए। तो अब यहां पर हमने आपको ये सब क्यों दिखाया? आप लोग पूछ रहे होंगे भाई क्या चल रहा है। अभी एक आपका स्लाइड था, मनस्थिति परिस्थिति, टाइटैनिक तक पहुंच गए थे आप, हाँ फिर ये सब लोग क्या है? द पॉइंट इज, वी जस्ट सॉ सम ऑफ द मोस्ट हैंडसम सेलिब्रिटीज ऑफ दिस कंट्री, इज इट नॉट? We just saw some of the most handsome celebrities of this country. Some of them want to leave also this country. That's another thing. But they are considered to be the most handsome. Now I'm going to show you. In actuality, in this millennium, who became the most handsome man? ये शख्स, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने, अब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये किस प्रकार का हैंडसम व्यक्ति है। मैं बताऊंगा इन व्यक्ति के बारे में। इस व्यक्ति को, हमारे भारत के हैं ये, इनका नाम है कल्याण सुंदरम। आपने अगर, बहुतों ने तो सुना भी नहीं हो, किसने सुना है इनके विषय में? देखिए यहां पे पहले जो तीन फोटो दिखाए तो सब लोग, हम लोग हाथ ऊपर किए होते कि डेफिनेटली हम उनको जानते। इनके बारे में आप लोग सुने भी नहीं है, देखना तो दूर की बात है। नाउ हाउ हैंडसम ही लुक्स, बट ही इज कंसिडर्ड टू बी द मैन ऑफ द मिलेनियम। ये मिस्टर कल्याण सुंदरम, नाम भी देखो सुंदरम, क्यों? ये शख्स, ये बंदा, इन्होंने अपने जीवन के 35 साल की जितनी सैलरी हर महीने की, उन्होंने जो अनाथ बच्चे हैं उनके शिक्षण में पूरी रकम, ऐसा नहीं कि कुछ उसमें से हिस्सा दिया, पूरी सैलरी 35 साल तक, कितने 35 साल की उनकी पूरी सैलरी अनाथ बच्चों के शिक्षण के लिए दे दी। और इतना ये व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ये सब कुछ किया इसने 35 साल कि ये ओवर टाइम एक खुद लाइब्रेरियन एक जगह का और अपने खुद के जीवन निर्वाह के लिए लॉन्ड्री में काम किया करता या फिर किसी होटल में वेटर का या फिर बर्तन मांजने का काम अपने, लेकिन जो अधिकांश जो लाइब्रेरियन होने से उसको जो सैलरी प्राप्त होती थी वो सब अनाथ बच्चों के शिक्षण के लिए लगा दिया उसने। और 35 साल बाद जब यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने हम लोग यहां पर ये जो फेक हीरोज हैं उनको देखते बैठे हुए, लेकिन अमेरिका ने इसको अवार्ड दिया और कितने धनराशि का अवार्ड दिया इसको, 30 करोड़ की धनराशि का अवार्ड दिया अमेरिका ने, जहां हम लोग पीके दिल वाले और ये सब में अपने पैसे बर्बाद कर रहे थे, जहां पर ये शख्स को रिकॉग्नाइज किया अमेरिका ने 30 करोड़। और स्टोरी खत्म नहीं होती, 30 करोड़ जो इनको रिवॉर्ड मिला इनके निस्वार्थ सेवा भाव, वो 30 करोड़ भी उन्होंने लगा दिया, अपने लिए नहीं रखा वो 30 करोड़, वो 30 करोड़ भी लगा दिया उन्होंने। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं और इनके जीवन के विषय में बताया गया है कि इनको एक बोलने की प्रॉब्लम थी, तकलीफ थी बोलने की, कि इनकी आवाज वो जैसे कि एक पुरुष की आवाज होती, पुरुष की आवाज नहीं थी, तो ये बोलने में बहुत शर्माते थे। तो इनको इन्होंने एक किताब में पढ़ा, डोंट बॉदर टू इम्प्रूव योर वॉइस बट स्ट्राइव हार्ड दैट पीपल स्पीक गुड अबाउट यू। ये लाइन उन्होंने पढ़ी एक पुस्तक में और उसके बाद उन्होंने निर्णय किया। इनफैक्ट 1953 में ये पैदा हुए, 1962 में जब इमरजेंसी चाइना इंडिया वॉर, तो उस समय नेहरू उन्होंने ये घोषणा की कि हमारे डिफेंस फंड के लिए जो भी आप कंट्रीब्यूशन दे सके, तो इनके पास एक सोने की चेन थी, तो इन्होंने वो सोने की चेन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को ला कर दी कि वो डिफेंस फंड में मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन। वहां से केवल जब वो 8-9 साल के थे, वहां से उनके अंदर ये वृत्तियां। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, हाँ ये कन्हैया कुमार जैसे टटपुंजी है कि गरीबी से आजादी गरीबी से आजादी। हमारा प्रश्न है कि तुम क्या कर रहे हो जो टैक्स पेयर्स का मनी लेकर तुम पीएचडी कर रहे हो अफ्रीकन स्टडीज के ऊपर, न तो उनका तुम कोई भला कर रहे हो न इस देश का भला कर रहे हो। और ऐसे जिनको मीडिया कोई पूछती तक नहीं कि पूरे देश ने इनको इतना इग्नोर किया कि अमेरिका ने रिकॉग्नाइज करके 30 करोड़ रुपए का अवार्ड इनको दिया, और यहां पर हम लोग सब, मैं खुद भी नहीं जानता था, मैं खुद भी अपने आप को शामिल करता हूं कि मैं अपने आप पर शर्म करता हूं कि मैं भी नहीं जानता था अब तक कि ये व्यक्ति ने अपने देश के लिए अपनी ओर से 35 साल तक क्या किया। तो बात यह है कि हां हमारे पास उदाहरण अवंती ब्राह्मण के हैं, युधिष्ठिर महाराज, भगवान श्री राम के, और वर्तमान भारत में ऐसे भी उदाहरण हैं जो लोग लगे हुए हैं इस भारत को और अच्छा बनाने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति, वो भी साउथ के हैदराबाद के, तो वो भी हमारे भारत को अच्छा बनाने के लिए वो किस कार्य में लगे हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे जस्ट अभी प्रोग्राम से आने से पहले मुझे मेरे एक मित्र ने भेजा, तो मैंने सोचा कि इन्होंने क्या किया है कि जो प्लास्टिक की कटलरीज होती हैं, जो कि जिसके अंदर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, तो उसके बदले इन्होंने अपने जो भी पीएचडी का जो इनका दिमाग वो लगाकर इन्होंने भारत को अपनी ओर से और बेहतर बनाने के लिए एक ऐसी कटलरी निकाली, कटलरी मतलब चम्मच इत्यादि, तो ऐसी चमचे बनाना प्रारंभ किया इन्होंने कि वो चम्मच को आप खा सकते हो, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको क्या बताया, एडिबल कटलरी। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कोई व्यक्ति कितने छोटे तरीके से लेकिन ट्राइंग टू मेक इंडिया बेटर, दीज आर द पीपल हु शुड बी फर्स्ट रिकग्नाइज्ड एज दोज हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बेटर ऑफ दिस कंट्री।
I ordered for idli sambar and the spoon is put in it. So as he was putting the spoon, I grabbed it from his hand, I ran my thumb on it, it was greasy. I took a sniff of it, it was already smelling of sambar. It's being reused. We know plastic has got so many chemical complexes in it, phthalates, chelates, bisphenols. These cause cancer, these leach into food. They don't biodegrade, but still we are using whole lot of plastic disposable cutlery. Why are we doing this? Answer obviously is there is no alternative. Oh well, we have an alternative now. We come up with an alternative, and that is edible cutlery. Here there is no coating. In fact, it is entirely nutritious. You can eat up the spoon. Delicious. It is made of jowar. Blended with rice and wheat without preservatives, just like dehydrated vegetables. Our product also has a very long shelf life of more than 3 years. In fact, you can even have a hot soup also. You can stir your sugar and have your tea. You can eat it up. You don't want to eat it, you can just throw it. It decomposes within 4 to 5 days.
विश्वास नहीं हुआ, पहले बार देखे तो लकड़ी समझी में, मगर काम में स्टार्ट होके काम शुरू किया बाद साग में डाल के अपन खाए, बहुत टेस्टी रहता मैडम। कभी खाने के चम्मच के बारे में सुना है? आपको एक सैंपल देती हूँ। आप अगर स्पून को काटेंगे तो स्पून का फ्लेवर आएगा आपको। इसमें जीरा, अजवाइन, रॉक सॉल्ट, ब्लैक पेपर मिलाते हैं और इसको बेक करते हैं। तो आप जब स्पून खाते हैं तो सिर्फ स्पून नहीं खा रहे, आप एक जोवार रोटी खा रहे
हैं। When it comes to financing this, I had to put the only asset that I have, which is the flat where I'm residing, as a collateral security, and then got the loan because there's no such technology. We are the first in the world, so the technology had to be created. I brought in this edible cutlery and trying to promote a market for millets and motivate farmers to move away from rice. Plastic is very cheap, true, but I can make it as cheap. I can, with volumes. And once when I get the volumes, I get on to the farmers directly and start procuring raw materials directly from the farmers, in which case my spoons will be as cheap as the plastic spoons. So now the cutlery is tasty, fun, nutritious and environment friendly. That's edible cutlery.
तो ऐसे ऐसे जैसे इन्होंने बताया कि अपना पूरा घर गिरवी रख दिया, यदि आपने सुना, क्योंकि ये जो उन्होंने ये चम्मच का निर्माण किया है, जवार, गेहूं, चावल, इनसे ये सब चम्मच बना रहे हैं, तो बात ये हम कर रहे हैं कि कैसे यदि आपने कुछ करने का ठाना, हम लोग सब भारत देश में ऐसी संस्कृति को लेकर पैदा हुए हैं कि जो संस्कृति हमारे मस्तिष्क को इतना सूक्ष्म और इतना तीक्ष्ण और शार्प बनाती है, ये संस्कृति, तब जाकर इनके अंदर या हम सब के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारी मनस्थिति से परिस्थिति को बदलने की शक्ति है। हम लोग केवल भ्रमित हो गए हैं जो चकाचौन, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो यहां वहां के फालतू की चीजें, उनको देखकर, जो कि इस देश का कोई भला नहीं कर रहे हैं, वो लोग योगदान उनकी तरफ से कुछ नहीं है, उल्टा और वाहियात पिक्चरें बना बनाकर वो और ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, हर प्रकार का मानसिक इत्यादि। और ऐसे जो हैं जो अपने तरीके से, छोटे तरीके से वो परिवर्तन ला रहे हैं, तो क्यों ना हम भी हमारे जीवन में कोई ऐसे महानुभाव के पदचिह्नों पर चलें कि जिनके मनस्थिति से हमारी परिस्थिति बदले और फिर हम हमारी मनस्थिति से परिस्थिति बदले। तो अंत में हम अब आपको रूबरू करना चाहते हैं ऐसे महानुभाव जिन्होंने अपनी मनस्थिति से क्या किया, उन्होंने पूरे विश्व की परिस्थिति बदलना चाही और किया भी। ये श्रील प्रभुपाद जो 70 वर्ष की उम्र में वो पाश्चात्य देश गए और वहां की परिस्थिति से प्रभावित न होकर अपनी मनस्थिति से वहां की परिस्थिति में परिवर्तन लाया उनके जीवनों में, और फिर उनको यहां पर लाकर भारत में जो उन्होंने क्रांति फैलाई। तो ये बहुत सुंदर वीडियो हमारे कांग्रीगेशन के सुमेध प्रभु ने बनाया है प्रभुपाद के ऊपर, बहुतों ने आप लोग देखे भी होंगे, परंतु अधिकांश जो नहीं देखे उनके लिए तो हमारे सुमेध प्रभु इधर हैं। सुमेध, तो वीडियो देखने के बाद तब तक हम उनको बुला लेंगे यहाँ पर, बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत सुंदर वीडियो बनाया है श्रील प्रभुपाद के ऊपर, जो ये टाइटल है ग्लोरियस सन ऑफ मदर इंडिया। तो ये हमारे सुमेध प्रभु ने इतना सुंदर वीडियो बनाया। जय श्री प्रभुपाद वन हु मेड द होल वर्ल्ड फॉलो इंडिया। तो ये सारे उदाहरण से हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम हमारे इस संस्कृति को पहचाने, जो श्री प्रभुपाद जैसे महानुभाव और भी हमने जो देखे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से कुछ करना चाहा है इस देश के लिए, तो आइए हम सब भी मिलकर हमारा योगदान दें और इस भारत देश को थोड़ा बेहतर बनाएं, अपने आप को बेहतर कर कर। इसलिए जो मैं अक्सर कहता हूं कि हमने श्री प्रभुपाद कहा करते थे ये भी कि मैं एक वृद्ध 70 वर्षीय भारतीय, मैं यदि जाकर ऐसी क्रांति फैला सकता हूं केवल 12 साल में, तो सारे भारतीय यदि मिल जाएं और सारे भारतीय मिलकर यदि अपना योगदान दे संस्कृति का पालन करते हुए और इस संस्कृति को दूसरों को बांटने में, तो हम कितनी बड़ी क्रांति न केवल इस पूरे विश्व में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैला सकते हैं। केवल कमी किसकी है? कमी है हमारे उस स्वेच्छा की, जिस स्वेच्छा से हम यदि इन श्री प्रभुपाद के पदचिन्हों पर चलकर ये निर्णय लें, ये संकल्प लें कि हाँ हम भी कुछ कर्ज रखते हैं इस भारत भूमि का, और इस कर्ज को अदा करने के लिए आज से हम कुछ करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं मंजिल तो हम पाकर रहेंगे लड़खड़ा कर सही, कायर तो वो हैं जो अब तक घर से निकले ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो आज का टेक होम मैसेज ये है, अपनी मनस्थिति से दूसरों की परिस्थिति बदलो। जय ग्रंथराज भगवत गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। हाँ तो हमारे सुमेध, तालियां इनके लिए, इतना सुंदर वीडियो बनाया इन्होंने।
हरे कृष्णा। तो इस ग्रह शिक्षा अष्टगम प्रभु की। आज भारत को ऐसे देशभक्तों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और उनको मदद